जी आज वैसे भी थोड़ी देर से क्लास शुरू करी है, तो इब्तिदा कर लेते हैं इंशाल्लाह सूरतुल कयामा। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद, तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو سورۃ القیامہ کی تفسیر ہم کئی کلاسوں سے پڑھ رہے ہیں، تو جیسا کہ ہماری ترتیب ہے کہ ہم جلدی جلدی نپٹانے کے انداز سے نہیں پڑھتے، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایک بات کو اچھی طریقے سے سمجھ کر کے پھر آگے بڑھا جائے، اور اس کے تحت جو ہے وہ کچھ ضمنی مضامین بھی ہماری اس کلاس کے اندر شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ علل اعلان ہم کر رہے ہیں، کوئی غلطی کی وجہ سے یا عادتاً مجبوراً نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خاص نیت کر کے یہ والا کام کرتے ہیں. تو طریقہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اس کو فائدہ مند بنا دے سب کے لیے، کہنے والے سننے والے سب کے لیے. تو سورۃ القیامہ میں انشاءاللہ آج جو ہے وہ آخری کلاس ہوگی، ایک پیج خالی رہ گیا ہے، پیج نمبر 628. ٹھیک ہے، تو یہ اگر جو ہے اس نے سنی لیا ہے جو بعد میں آئے گا اس کو تو یہ ویسے بھی نظر نہیں آئے گا کہ کیا ہم نے چیپٹر نمبر لکھا. تو پیج نمبر 628 کے اوپر اس کے جو آخری چند آیات ہیں ان کی تفسیر ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. تو اس کے تحت لکھتے ہیں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کہ سابقہ آیات میں قیامت کے حساب کتاب اور اہل جنت و دوزخ کا کچھ حال بیان فرمانے کے بعد اس آیت میں انسان کو متوجہ کیا گیا کہ اپنی موت کو نہ بھولے، موت سے پہلے پہلے ایمان اور عمل صالح کی طرف آ جائے تاکہ آخرت میں نجات ملے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی، کتنی اچھی زندگی ہوگی، من مرضی من پسند کی زندگی ہوگی، اور جہنم میں بتاتے ہیں کہ وہاں پر بالکل بھی پسند نہیں چلے گی، بالکل بھی اپنی مرضی نہیں چلے گی، حتیٰ کہ اتنی بھی نہیں چلے گی جتنی کہ اس دنیا میں چل جاتی تھی. اس دنیا میں تو چل جاتی ہے نا، تھوڑی بہت، زیادہ نہیں چلتی لیکن تھوڑی بہت، کہ بھئی ہاں بھئی یہ کرنا ہے کر لیا، کچھ کر گزرتے ہیں بہت سارے کام جو ہم پلان کرتے ہیں، لیکن جہنم کے اندر تو اتنی بھی مرضی نہیں چلے گی. لیکن چونکہ انسان کو غافل کرنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی آپ کو بتا دیا جنت میں بڑے اچھے اچھے کام ہوں گے، بڑی اچھی اچھی چیزیں ملیں گی، اور یہ بھی بتا دیا کہ جہنم کے اندر جو ہے وہاں پر بہت برے حالات ہوں گے، سب کچھ ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن جو سننے والا انسان ہے نا، تو اس کو جو ہے وہ ممکن ہے کہ سننے کے باوجود جو ہے نا وہ کامل فائدہ نہ ہو. ٹھیک ہے، سننے کے باوجود جنت کے بارے میں معلوم ہو گیا، جہنم کے بارے میں معلوم ہو گیا، لیکن یہ ساری جو نالج اس کو ملی ہے، تو یہ نالج اگر اس نے سبجیکٹیولی لے لی، सब्जेक्टिवली, समझते हैं, सब्जेक्टिवली अगर उसने ये नॉलेज ले ली और इसको ऑब्जेक्टिवली नहीं लिया तो उसको फायदा नहीं होगा, है ना भाई। मिसाल के तौर पर इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा अपनी तस्वुर को इस्तेमाल करें कि दीन इस्लाम जो है ना, हमारा दीन, ठीक है, इस दीन के बारे में जो उलूम हैं, ये उलूम जो है ना, ये बहुत सारे गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं। बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स हैं अमेरिका में, यूरोप में, हत्ता के हिंदुस्तान के अंदर, हर जगह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जा करके दीन इस्लाम के किसी शाख में, यानी तफसीर के अंदर पीएचडी कर रहे हैं, हदीस के अंदर पीएचडी कर रहे हैं, फिका के अंदर कर रहे हैं, और बल्कि इनके अंदर भी ऐसे ऐसे दकीक मजामीन होते हैं कि जिनके अंदर वो बाकायदा रिसर्च पेपर्स लिखते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं, इतने सारे उलूम हासिल करते हैं वो इस्लाम के बारे में, है ना, इस्लामी तारीख के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन क्या वो मुसलमान हो जाते हैं उसके बाद? कलमा पढ़ लेते हैं, कुफ्र से तौबा कर लेते हैं? नहीं, नहीं करते। सही बात है ना, करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते, इल्ला माशाअल्लाह, कोई एक आध जो है ना, उन लाखों में से या हजारों में, चलो लाखों नहीं कहते, हजारों में से कोई एक आध जो है ना, वो कलमा पढ़ के मुसलमान होता है, और कोई भी नहीं होता। हालांकि उन्होंने कुरान भी पढ़ा, हदीस भी पढ़ी, दीन इस्लाम क्या कहता है, ये सारी चीजें, और नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ की जो बेहतरीन खूबसूरत खूबसूरत बातें हैं वो सारी की सारी उन्होंने पढ़ी हैं, राइट। उसके बगैर तो वो आगे नहीं चल सकते दीन इस्लाम के उलूम के अंदर। लेकिन उनको फायदा क्यों नहीं हुआ? इतने उलूम हासिल करने के बावजूद क्यों नहीं फायदा हुआ? सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने इसको ऑब्जेक्टिवली नहीं पढ़ा, सब्जेक्टिवली पढ़ा। कहते हैं ना कि बतौर सब्जेक्ट के आप किसी चीज को पढ़ें, आप उसको बतौर ऑब्जेक्ट के ना पढ़ें, या किसी चीज, कोई चीज ऐसी होती है कि भाई आप उसको ऑब्जेक्टिवली पढ़ें, सब्जेक्टिवली ना पढ़ें, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ वैसे तो अंग्रेजी और अंग्रेजदानी को जो है वो बहुत बड़ी कामयाबी की दलील समझा जाता है ना, इंसान की जिंदगी संवर जाएगी अगर उसको अंग्रेजी अच्छी आ गई हो, है ना। तो उमूमी तौर पर तो ये है तस्वुर, ये है हमारा मिजाज अंग्रेजी के साथ। लेकिन जो कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा कौम परस्ती की तरफ आते हैं, या कौमियत उनके अंदर, कौम परस्ती का लफ्ज ना इस्तेमाल करना चाहिए, कौमियत, है ना, नेशनलिज्म जिनके अंदर जरा आता है कि नहीं भाई हम तो हिंदुस्तानी हैं, राइट, या हम पाकिस्तानी हैं, और हमारी जो जुबान है वो तो उर्दू है या अरबी है, ठीक है ना। तो अब जो है ना, अंग्रेजी जो है ना, वो आप अगर इल्म हासिल कर रहे हैं अंग्रेजी का तो बेशक आप इल्म हासिल करें, लेकिन एज अ सब्जेक्ट पढ़ें आप उसको, एज अ सब्जेक्ट अंग्रेजी को पढ़ें, अंग्रेजी को सीखें, ठीक है ना, लेकिन एज एन अपनी जिंदगी का मकसद मत बनाएं अंग्रेजी को, है ना, कि भाई अंग्रेजी होगी तो सब कुछ होगा, अंग्रेजी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा मत बनाएं आप अंग्रेजी को। एज अ सब्जेक्ट पढ़ें, जैसे आप जापानीज को एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे आप अगर चाहते हैं तो आप जर्मन लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट पढ़ें, फारसी लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट पढ़ें, उसी तरह अंग्रेजी को भी एज अ सब्जेक्ट पढ़ें ना, राइट। अपनी निजात का जरिया तो मत समझे ना अंग्रेजी को, ठीक है ना। तो अंग्रेजी को पढ़ने के लिए ये लोग जो है वो कहते हैं आप उसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ें, एज अ जिंदगी का ऑब्जेक्टिव बना के ना पढ़ें, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? किसी को कुछ बात समझ में ना आ रही हो तो प्लीज पूछ लिया करें, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब दीन की बात आती है ना, तो वहां पर उल्टा मामला होता है कि भाई दीन को एज अ सब्जेक्ट पढ़ने अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा, दीन को तो आपने एज एन ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, अपनी जिंदगी का मकसद बना करके पढ़ना है कि अगर ये मुझे समझ में आ गया और मैं इसको यानी अपनाने वाला बन गया तो मेरी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाएगी, राइट। और अगर नहीं पढ़ सका इसको, नहीं समझ सका इस दीन को, पढ़ने का मतलब खाली अल्फाज पढ़ लेना नहीं बल्कि समझ लेना, अमल में ले आना, तो फिर मैं दुनिया में भी नाकाम रहूंगा और आखिरत में भी नाकाम रहूंगा। इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिवली पढ़ना, ठीक है। तो कहने का मकसद यह है कि सिर्फ आपको जन्नत का बता देना और जहन्नुम का बता देना ये काफी नहीं है, इसलिए कि आप इसको एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। हाँ भाई जन्नत में ये सब कुछ होगा, वाह भाई बड़ी मेरे नॉलेज में इजाफा हो गया कि जन्नत में ये सारी नेमतें होंगी, उसी तरह जहन्नुम के अंदर ये अजाब होगा, वो अजाब होगा, ये मेरी नॉलेज में इजाफा हो गया, तो ये बतौर सब्जेक्ट पढ़ना हो गया ना। अब इसके अंदर यानी शैतान ने क्या कर दिया कि पढ़ तो आप सब कुछ रहे थे जन्नत जहन्नुम के बारे में, लेकिन शैतान ने इसको ऐसे बना करके आपके जहन में यानी पेश किया कि ये चीजें, यानी मिर्जा गालिब का वो शेर याद है किसी को, कोई है जरा शेर व शायरी से ज़ौक रखने वाला? मिर्जा गालिब ने बड़ी जबरदस्त बात कही थी, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है ना भाई, जन्नत के बारे में सब कुछ हमें पता है लेकिन ये बस दिल के बहलाने वाले ख्यालात हैं कि हाँ भाई जाएंगे तो ये मिलेगा, राइट, नफ्स को खुश करने के लिए ऐसी बस फील गुड होने के लिए ना जन्नत के बारे में ये सारी बातें हमें बताई जाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे शख्स को जो है, अब गालिब साहब जो है वो गलबा हाल में ये बात कह गए हैं तो शायद उनकी बचत हो जाए, लेकिन अगर वो वाकई अपने अकीदे के एतबार से ये बात कह गए कि भाई जन्नत वन्नत जो है ना बस ऐसी बस कहने की बातें, तो फिर तो वो काफिर हो गए, है ना, चाहे आप उसको कितने अच्छा यानी मुसलमान समझते रहें, अगर उसने ऐसी बात कही अकीदतन अकीदे के तौर पर तो वो तो बंदा काफिर हो गया ना, ठीक है। तो इस तरह से शैतान जो है ना वो जन्नत जहन्नुम की बातों को हमारे जहन में बस एक एज अ सब्जेक्ट बना के रखना चाहता है, ठीक है ना। तो अब इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कि नहीं भाई ये सब्जेक्ट नहीं है खाली, ये आपके ऊपर अप्लाई होता है, आपके लिए ये आपकी जिंदगी का मकसद है, उसके लिए मौत की फिक्र, मौत का ध्यान ये लाजमी है कि मैंने भी मरना है। ये जन्नत वो मौलाना साहब वो शेख साहब वो जो वली अल्लाह थे, ये जन्नत उनके लिए नहीं है खाली, यानी सिर्फ उन लोगों के लिए है कि आप ही मर गए जन्नत में पहुंच गए, राइट, नहीं मुझे भी जन्नत में जाना है भाई, मेरी जिंदगी का भी गोल जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो जन्नत है, और जहन्नुम, ये जहन्नुम जो है वो सिर्फ फिरौन और हामान और नमरूद और अबू जहल और हिटलर और मिर्जा कादियानी और ये जितने गंदे गंदे और बुरे बुरे लोग थे या हमारे मुल्क के सियासतदान जिनको के हमने जहन्नुमी समझ यानी फैसले किए हुए उनके जहन्नुम के, तो ये जो है ना सिर्फ उन लोगों के लिए जहन्नुम नहीं है बल्कि मुझे भी जहन्नुम में डाला जा सकता है, मरूंगा तो मरने के बाद मैं भी जहन्नुम के अंदर डाला जा सकता हूं, मुझे उससे बचने के लिए तदाबीर भी करनी है ना, ठीक है ना। तो इसको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ना मौत का जिक्र जो है वो जरूरी है, वरना इंसान ये समझता है कि जी दूसरे लोग मरेंगे मैंने तो नहीं मरना, राइट, या अगर मैं मर भी गया ना तो भी मैंने तो स्ट्रेट जन्नत के अंदर ही जाना है और जहन्नुम की तरफ नहीं जाना। तो मौत का तذکرہ किया कि अपनी मौत को ना भूले, ये दुनिया की लज्जतें, ये दुनिया की इज्जतें, ये दुनिया का माल असबाब, ये दुनिया की जो मोहब्बतें हैं ये सारी की सारी इधर ही रह जानी है, ये मेरे साथ मेरे कब्र में नहीं जाएंगी, है ना वो हदीस मुबारका का मजमून कि इंसान जब मरता है तो उसके नियत को कब्रिस्तान में जो लेके जाते हैं तो साथ उसका माल भी जा रहा होता है, मिसाल के तौर पर जैसे उसके उसके माल से जो है ना वो कफन खरीदा गया तो कफन उसका माल है क्योंकि इसके पैसों से खरीदा गया है, राइट। उसी तरीके से जिस गाड़ी के अंदर इसके फैमिली वाले बैठ करके जा रहे हैं कब्रिस्तान, वो गाड़ी भी इसके माल से खरीदी गई तो गाड़ी भी इसका माल है, तो माल साथ जाता है कब्रिस्तान, सही है। उसी तरीके से जो खानदान वाले लोग हैं फैमिली वाले लोग हैं वो भी साथ जा रहे होते हैं कब्रिस्तान। और तीसरी चीज कौन सी इसके साथ जा रही होती है, इसके नाम है आमाल, सही है। तो जब इसको कब्र में उतार दिया जाता है तो अब इसकी आलम बरज़ख वाली जिंदगी शुरू हो जाती है। आलम बरज़ख वाली जिंदगी में क्या होता है कि इसके नाम आमाल तो इसके साथ रहते हैं लेकिन इसका माल और इसके खानदान वाले लोग इसको वहां पर छोड़ करके वापस आ जाते हैं, कोई इसके साथ कब्र के अंदर नहीं उतरता, राइट। और इससे मुराद क्या है, मैं आप, है ना, इससे मुराद कोई थर्ड पर्सन नहीं है जो कि हाँ भाई वो मरते थे और वो मर करके कब्रिस्तान में चले जाएंगे और फिर वहीं पे रह जाएंगे, मैं, राइट, मेरे साथ भी यही होने वाला है ना, मेरे साथ कोई क्या नए किस्म की चीज होने वाली है कि जब मैं मरूंगा तो मुझे जो है वो चुइन लाई की तरह से प्रिजर्व कर दिया जाएगा। वो था ना उस वो चीन का बहुत बड़ा कोई लीडर था, ठीक है, तो वो जब मर गया ना तो फिर उन लोगों ने उसको कब्र में नहीं उतारा बल्कि उसको जो है वो वो ममिफाई कर दिया और उसकी इस तरह से लाश को जो है प्रिजर्व कर दिया, पता नहीं चोइन लाई था या कौन था, ठीक है, या फिर ऑन की लाश को इस तरह। तो भाई हमारे साथ कोई अलग चीज तो नहीं होने वाली है ना, अगर ऐसा कर भी दिया किसी ने तो भी कब्र तो फिर भी होने वाली है, बरजख की जिंदगी तो फिर भी शुरू हो जाने वाली है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो यही रह जाएंगी। मौत का इस्तेहजार, मौत का ध्यान जो है ना, वो ये बात याद दिलाता है कि अकेले जाना है बस आगे, किसी ने तुम्हारे साथ नहीं जाना, सिर्फ तुम्हारे नाम अमाल ने जाना है। तो मौत जो है ना वो सब्जेक्टिव नॉलेज को ऑब्जेक्टिव नॉलेज बनाने में एक 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 अहम किरदार अदा करती है मौत का जिक्र, ठीक है। इसी वजह से हमारे मशायख जो मुराकबे बताते हैं ना, तो उन मुराकबों में एक मुराकबा जो है वो मुराकबा मौत कहलाता है। मौत का यानी जैसे हमारे यहाँ आपने सुना ही होगा, आंखें बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उसे हट कट कर अल्लाह ताला की याद में डूब जाए, है अल्लाह की रहमत आ रही है मेरे दिल में समा रही है, ये सब है ना, ये नक्शबंदिया सिलसिला का मुराकबा कहलाता है, ठीक है ना। चिश्तिया सिलसिले के अंदर एक मुराकबा होता है जिसको कहते हैं मुराकबा मौत, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, तस्वुर ये करें कि आप कब्र में उतर चुके हैं, अपनी कब्र में उतर चुके हैं, आपके खानदान वाले आपके ऊपर मिट्टी डाल करके वापस जा चुके हैं, अब आप तने तनहा उस खूब अंधेरी कब्र के अंदर पड़े हुए हैं, और फिर जो वादे किए गए हैं, बताई गई हैं बातें कि मुनकर और नकीर ने आना है, वो आ रहे हैं और वो आपको उठा रहे हैं, और उठाने के बाद अब वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, मन रब्बुक मन मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा रब कौन है, राइट, और मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, ये सवाल जवाब हो रहे हैं। तो उस वक्त आप जवाब दे रहे हैं उन चीजों का, और फिर आपके साथ क्या क्या कुछ हो रहा है जो कि हदीस मुबारक के अंदर हमें कब्र की तफसीर मिलती है। तो ऐसे ना इंसान को जो है ना वो उसके अंदर एक जो एक दुनिया के साथ एक लगाव पैदा हो चुका होता है कि जी बस यहाँ के जो मामलात है ना इनको तो मैंने छोड़ना ही नहीं है। मैं एक गिरफ्त होती है इंसान की, एक होती है ना हाथ से आप किसी चीज को पकड़ लेते हैं उसको कहते हैं गिरफ्त में ले आना, अब इंसान ना उस गिरफ्त को ढीला नहीं करना चाहता, नहीं नहीं ये चीज तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उसी तरीके से एक जहनी गिरफ्त होती है, जहनी गिरफ्त जो होती है ना वो इस दुनिया के मामलात पर होती है कि जी मैंने इन मामलात को चलाना है, मैं हूंगा तो ये मामलात चलेंगे, मैं नहीं हूंगा तो ये कैसे चल सकते हैं, मेरे बगैर ये कैसे चल सकते हैं, ये तो बड़े अच्छे मामलात हैं, ये काम तो होने चाहिए दुनिया के अंदर, तो चूंकि मैं इन कामों को कर रहा हूं तो मेरा होना बड़ा जरूरी है इसके लिए, मैं हूंगा तो ये काम चलेंगे, मैं नहीं हूंगा तो ये काम नहीं चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ना एक जहनी गिरफ्त इंसान की बन जाती है जिंदगी के ऊपर, अपने घर के ऊपर, राइट, लोगों के ऊपर, और वो इस गिरफ्त को जो है वो लूजन नहीं करना चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है ना। लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है कि जब वो आ जाएगी, और किसी भी वक्त आ सकती है, वो आ जाएगी तो चाहे ना चाहे ये गिरफ्त जो है वो छोड़नी पड़ेगी, राइट, अपनी मनमर्जियां सारी खत्म हो जाएंगी, सारी ख्वाहिशात खत्म हो जाएंगी, सारे जो है ना वो ऑर्डर्स जो दिए होंगे दुनिया वालों को, वो सारे के सारे ऑर्डर्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला मौत का यहाँ पे हमें तस्करा करते हैं कि मौत से ना भूले, मौत को ना भूले, मौत से पहले पहले ईमान और अमल सालेह की तरफ आ जाए ताकि आखिरत में निजात मिले, बंदा बन जाए इसके लिए, अपने आप को झुकाना शुरू कर दे। आयत मस्कूरा में मौत का नक्शा इस तरह खींचा गया कि गफलत शियार इंसान भूल में रहता है यहां तक कि मौत सर पर आ खड़ी हो और रूह तरकूफ यानी गले की हंसनी में आ पहुंचे, आ फंसे, और तीमारदार लोग दवा व इलाज से आजिज होकर झाड़ फूंक करने वालों को तलाश करने लगे और एक पांव की पिंडली दूसरे पर दूसरी पर लपटने लगे, तो ये वक्त अल्लाह के पास जाने का आ गया। तो ये कुछ अलामात हैं जब इंसान बिस्तर पर लेटा लेटा उसके ऊपर मौत आनी शुरू होती है ना, तो ये चंद चीजें उसके ऊपर होनी शुरू। ये सब मैंने क्यों कहा बिस्तर पे लेटा लेटा, इसलिए कि अगर तैयारे के हादसे के अंदर आपका इंतकाल हो जाए तो फिर वहां पर पिंडली पिंडली के ऊपर नहीं लपटती, ना, वहां पर झाड़फूंक करने वाले लोग नहीं होते, है ना। उसी तरीके से कोई और एक्सीडेंटल मौत हो, गाड़ी के अंदर जा रहे हैं और एक ट्रक ने जो है वो आकर के आपकी यानी गाड़ी को जोरदार किस्म की टक्कर मार दी, अब वहां पे सारी चीजों तो थोड़ी होंगी, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने ना एक एक मिसाल दी है खाली यहां पर कि मरने वाले के साथ ऐसा भी होता है, ठीक है, बदन अकड़ना शुरू हो जाता है और जाहिर है जब अकड़ेगा तो पांव की पिंडली भी जो है वो यानी सुकड़ना शुरू हो जाएगी, और सुकड़ेगी तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि एक पिंडली जो है वो दूसरी पिंडली के ऊपर लपेट रही है, क्योंकि ये सुकड़ने की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वक्त हो गया ना कि जब ये सब क्यों हो रहा है, ये सुकड़ क्यों रही है, ये अकड़ क्यों रही है, इसलिए क्योंकि रूह निकल रही है, रूह जो है ना वो सिमट रही है और सिमट करके जो है वो मुंह की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। जहां से रूह निकल गई वो जगह जो है वो यानी ऐसी बन जाएगी जैसे कि उसके अंदर कुछ नहीं है, जैसे कि एक मुर्दा चीज जो होती है वो फ्रेश नहीं होती, उसके अंदर फ्रेशनेस नहीं होती। हम भी इस तरह से मुराकबा कर सकते हैं किसी खास वक्त को फिक्स करके, नहीं, जो लोग किसी सिलसिले के अंदर बैठ है ना तो वो अपनी मन मर्जी नहीं चला सकते ना फिर, ठीक है, कि ये चीज बड़ी अच्छी है तो हम इस तरह से मुराकबा करना शुरू करते हैं। नहीं, मुराकबा आप नहीं कर सकते, मुराकबा जो है ना वो एक खास तरीके के जिक्र को कहते हैं जो कि मशाइख के इजाजत से बल्कि उनके हुक्म के ऊपर ही करना होता है, ठीक है ना। लेकिन आप जो है ना वो मुराकबे की नियत के बगैर कभी बैठ करके इन चीजों के बारे में फिक्र जरूर कर सकते हैं, सोच जरूर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुराकबे की नियत ना करें बल्कि ये सोचें कि बस ये होने वाले मेरे साथ, ठीक है। तो अब वो मुराकबा नहीं बनेगा बल्कि वो फिर ये यानी वो फिक्र बन जाएगी ना, ठीक है। इसके लिए जो है वो कभी कभार कब्रिस्तान भी जा सकते हैं, औरतें अंदर नहीं जा सकती, बाहर तक तो जा सकती हैं ना, बाहर जाने में किसने मना किया है, दीवार है, दीवार इतनी ऊंची कभी नहीं होती है, ऐसी छोटी दीवारें होती हैं कि आपको अंदर नजर आ जाता है। हमारे यहाँ रियाज शहर में घर के करीब ही जहाँ पे हमारी वालदा भी मदफून है, वो कब्रिस्तान जो है उसके एक साइड पे ना जरा ऊंचाई है, कुछ पहाड़ी एरिया है, तो वहां पर अगर गाड़ी से जा रहे हो ना तो पूरा कब्रिस्तान नजर आ जाता है, सही है। तो वो तो बिल्कुल ही बाहर है कब्रिस्तान के, तो अगर आप गाड़ी में ऐसी जगह पे कहीं चले जाएं जहां पे के अंदर की कब्रें नजर आ रही हो, जन्नतुल बकी, मदीना मुनव्वरा भी अल्हम्दुलिल्लाह जाना हुआ तो जन्नतुल बकी में भी एक साइड पे उन्होंने ऐसा दरवाजा बनाया हुआ है कि जो कि यानी दरवाजा है पूरा, उसके ऊपर जालियां लगी हुई है, अगरचे के वो लॉक रहता है, लेकिन अगर आप उस दरवाजे पे जाके खड़े हो आपको पूरा जन्नतुल बकी नजर आ रहा होता है, ठीक है ना। वो मेन रोड के ऊपर है एक्चुअली वो दरवाजा, ठीक है। तो कब्रिस्तान जाना और कब्रों को देखना ये भी जो है वो मौत की को याद दिलाने के लिए काफी होता है, अच्छा होता है ये, ठीक है ना। इबरत के लिए तो कब्रिस्तान जाने का कहा गया ना। तो आयत मस्कूरा में मौत का नक्शा इस तरह हो गया, अब ना तो तौबा कबूल होती है क्योंकि अब तो रूह निकल रही है, अब कैसे तौबा कबूल होगी, ना कोई अमल कबूल होता है, इसलिए अकलमंद पर लाजिम है कि इस वक्त से पहले इस्लाह की फिक्र करे। अच्छा, अब ये जुमला जो है वो वैसे तो पढ़ करके बड़ी तेजी से आगे गुजर सकते हैं लेकिन इस फकीर का बिल्कुल ऐसा कोई इरादा नहीं है, ठीक है, तो अब जरा बर्दाश्त करें। और हजरत जी की बुक मौत की तैयारी पढ़ती हूँ जी, बहुत अच्छा करती हैं। हमारे हजरत ने जो बहुत से अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं उनमें से एक बेहतरीन किताब जो है ना वो मौत की तैयारी है, ठीक है, उसका नाम ही है मौत की तैयारी। तो उसके अंदर बेशुमार ऐसे वाकयात लिखे हुए हैं, इतने सारे मतलब वाकयात लिखे हुए हैं और बहुत सारी बातें हैं, तो उनको जो है वो अपने उस किताब को अपने मुताले में रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगली बात शुरू करने से पहले एक और बात जो है वो मेंशन कर दूँ क्योंकि लोग हालात बताते हैं तो इस वजह से वो होता है ना कि जो डॉक्टरी वाला काम कर रहा होता है ना, बेशक चाहे वो डॉक्टर हो या ना हो, लेकिन ऊपर से किसी ने कहा कि हाँ भी आप करें डॉक्टरी वाला काम, तो अब डॉक्टरी वाला काम करने में ना फिर ये एक एक, एक, एक उसका एक फायदा तो खैर क्या कहें, लेकिन उसका एक लाजमी जुज है डॉक्टरी वाले काम का कि आपको लोगों के अहवाल सुनने होते हैं, और जब लोगों के अहवाल सुनते हैं तो फिर हर बंदा ही मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने बनाया, ये अल्लाह ताला की शान है ना कि अल्लाह ताला ने हर मखलूक अपनी दूसरी मखलूक से मुख्तलिफ बनाई है। वो पढ़ा है ना सूरह क़यामत के अंदर कि वो जो फिंगरप्रिंट्स हैं उस फिंगरप्रिंट्स वो हर बंदे के मुख्तलिफ होते हैं, तो जिस तरह फिंगरप्रिंट्स हर बंदे के मुख्तलिफ होते हैं, उसी तरह हर बंदे की सोच भी मुख्तलिफ होती है, हर बंदे का की यानी इस्तेदाद भी मुख्तलिफ होती है, इस्तेदात मुख्तलिफ होती है, ठीक है। तो इस वजह से हर एक हालात जो होते हैं ना वो बिल्कुल ही यूनिक होते हैं अगले बंदे से, यानी कुछ प्रिंसिपल्स में तो हो सकते हैं मैच कर जाए कभी, लेकिन अदरवाइज एवरीवन इज डिफरेंट, ठीक है। तो अब जो है वो मौत के बारे में बात होती है, तो माशाल्लाह ऐसे ही भी लोग हैं कि जो कि मौत की फिक्र को जो है ना फिर वो कुछ और ही बना लेते हैं, है ना। वो मौत की फिक्र में ना उनको फिर वो डिप्रेशन होनी शुरू हो जाती है उनके, जो है ना वो यानी दिल बैठना शुरू हो रहा है, और खाना पीना छोड़, यानी खाना पीना तो खैर छोड़ना हमारे मशायख के अभी हो जाता है कि जब इस किस्म की फिक्र होती है तो खाना कम हो जाता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन दिल का बैठना, कोई काम काज नहीं हो रहा, पसीने आने शुरू हो गए, और जो है वो सर में दर्द शुरू हो गया, और ये ठीक है। अब ये जो कैफियत तारी हो रही है ना ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि मौत की फिक्र करने का मतलब ये नहीं है, ठीक है ना। तो इस ये अगर किसी को कैफियत हो रही है ना तो उसको चाहिए कि इसको वो उसको फिक्स करने की कोशिश करे, इसको ठीक करने की कोशिश करे, ठीक है ना। तो पूछ लेना चाहिए वैसे तो, अच्छा अब इन्होंने पूछा है, लेकिन हकीकत यह है कि मुझे अपनी गलती का इतराफ है कि मैं उनको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ अभी तक, ठीक है, सही तरह से इसका जवाब नहीं दे पाया हूँ। तो इसका जवाब अभी क्लास में सुन लें, ठीक है ना। वो क्या है कि अगर आपको मौत के बारे में सोच करके ऐसी कैफियात हो रही है कि दिल बैठ रहा है और पसीने आ रहे हैं और ठंडी पड़ रही है और हाथ पैर जो है वो यानी फालिज वो कि ऐसी कैफियत हो रही है कि कुछ कर नहीं पा रही है, तो ये दृश्य आप कुछ गलत कर रही हैं, इस वजह से आपके ऊपर कैफियत आ रही है, ठीक है ना। ये तरीका नहीं है मौत की फिक्र करने का। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने ना बात को या तो गलत समझ लिया होता है, ठीक है ना। बड़े बड़े लोग भी गलत समझ लेते हैं, और छोटे तो और भी माशाल्लाह, आपको पता ही आजकल क्या किस किस्म के नौजवान हैं कि वो बात कुछ कर रही हो की जा रही होती है वो कुछ का कुछ बना लेते हैं, और फिर उसके बाद एक तमाशे शुरू हो जाते हैं इस किस्म के। अल्लाह माफ करे, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए इस किस्म के फितनों से, लेकिन लोग कुछ का कुछ समझ लेते हैं। तो मौत की फिक्र को भी आपने समझा नहीं है, तो ना कम से कम एक बार इस वक्त ये सुन लें कि मौत की फिक्र जो है ना इसका यानी आपके आसाब पर ऐसे सवार नहीं होनी चाहिए। ये एक ना खालिसतन अकली चीज नहीं है, ये खालिसतन अकली चीज नहीं है कि अब आप सोचना शुरू कर दें खाली इसके बारे में और सोच सोच करके पागल हो जाएं, दीवानी हो जाएं, ये मतलब नहीं है इसका। बल्कि अकली तौर पर ना बस अपने आप को ये कन्विंस करना होता है कि जी मैंने मर जाना है और अल्लाह ताला के सामने हिसाब देना है, लेकिन इसका असर जो है ना वो क्या होना चाहिए आपके ऊपर? ठंडा पड़ जाना आपका असर नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए, पसीने छूट जाना आपके आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका असर आपके ऊपर ये होना चाहिए अगर आप ईमानवारी यानी ईमानवाली के तौर पर इस चीज को देखना है ना, ये कोई आप यानी क्या कहते हैं ये जो असरात है ना ये तो किसी काफिर के ऊपर होंगे, ठीक है ना। ये काफिर लोग जो होते हैं ये मौत से कितना डरते हैं, डरते हैं कि नहीं डरते आप कह सकते हैं कि नहीं काफिर को तो मौत से कोई खौफ ही नहीं होता। भाई मौत से कितना खौफ है? ये सारा का सारा जो कोरोना के ड्रामे चल रहे हैं सारी दुनिया के अंदर, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग चीज है वो मौत का खौफ है। मर जाओगे, कोरोना लग जाएगा, राइट, तुम भी मरोगे, तुम्हारे खानदान वाले भी मरेंगे, तुम सबके मरने का सबब बनोगे, इस वजह से जो हम कह रहे हैं ना वो करो, राइट, सब कुछ छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो ऐसा कर लो, सारे के सारे सारी दुनिया का निजाम कैसे तब्दील हो गया? क्योंकि सबके ऊपर मौत का खौफ तारी है। तो मौत का खौफ तो भाई खाली ईमान वाले पेपर पे थोड़ी होता है कि आप मौत की तैयारी वाली किताब पढ़ेंगे तो आपको मौत का खौफ आएगा। भाई मौत का खौफ तो हर इंसान को होता है, बस आप रिमाइंडर्स दिलवाएं उनको, उनके ऊपर मौत का खौफ तारी हो जाएगा। जैसे कि सारी दुनिया के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोगों को रिमाइंड करवा रही है कोरोना आएगा, मर जाओगे मर जाओगे मर जाओगे, सब तैयार है उनकी बात सुनने के लिए अब, ठीक है ना। तो मौत के खौफ का मतलब ये नहीं है कि आप लाजिमन ईमानी तरीके से मौत का खौफ कर रही है, नहीं, ये जरूरी नहीं है। आप काफिरों के तरीके से भी मौत का खौफ कर सकती हैं, मौत के खौफ का शिकार हो सकती हैं। तो ये जो है ना तरीका कि हाथ पैर ठंडे पड़ गए, अब कुछ नहीं किया जा रहा, या यानी पसीने छूट रहे हैं और डिप्रेशन तारी हो रही है, ये काफिरों वाला तरीका है। तो ईमान वाले वाले का क्या तरीका है फिर? ईमान वाला जब मौत का खौफ करता है तो उसके ऊपर क्या असरात होने चाहिए, अगर आप बता दें तो बेहतर नहीं होगा? मैं ही बोलता रहता हूँ खाली।
ईमान वाले के ऊपर मौत के खौफ से क्या फर्क पड़ना चाहिए, क्या असर आना चाहिए उसकी जिंदगी में अगर बुढ़ापे में ऐसी कैफियत हो? आमाल की तरफ ध्यान, बिल्कुल ठीक है, उसका ध्यान आमाल की तरफ जाना चाहिए। और डिफरेंट डिफरेंट जवाब दें, तौबा, तौबा की फिक्र होनी चाहिए उसको, ठीक है। दुनिया की लज्जतों से उसका दिल उचाट हो जाना, दुनिया की लज्जतों से, राइट, ये काफिर के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ईमान वाले के ऊपर असरात ये होने चाहिए कि उसको तौबा की फिक्र पड़ जानी चाहिए, यानी अल्लाह की नाफरमानी से बचना, ठीक है ना। वो कैसी तौबा हुई कि जी आपको अल्लाह की नाफरमानी से बचने की फिक्र ना हुई, बस खाली तौबा तौबा तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा बोले चले जा रहे हैं, राइट। तो अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना, यही तो तौबा होती है, ठीक है। और अमाल की तरफ ध्यान कि भाई मैं और कर लूं, ठीक है ना, यानी अपने फराइज जो है वो अंजाम दूं, चाहे वो शौहर की तरफ वाला फर्ज हो, मैं वो फर्ज भी अंजाम दूं, बच्चों की तरफ मेरे फराइज हो, मैं वो फराइज भी अंजाम दूं, अल्लाह ताला की तरफ मेरे फराइज हैं, वो फराइज भी मैं अंजाम दूं, ठीक है ना। तो अमाल की तरफ ध्यान चला जाना चाहिए, और दुनिया की लज्जतें जो है ना वो उसके नजदीक जो है वो हीच हो जानी चाहिए, ठीक है ना। ये यानी शुगल मेले जिसको कहते हैं, हमारे पंजाबी हजरात जो है ना वो कहते हैं शुगल मेला, ठीक है ना। तो शुगल मेले जो है ना उनकी इसकी जिंदगी से जरूरत यानी अहमियत खत्म हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए कम अज कम। ये होता है ईमान वाले के ऊपर असर, और काफिर के ऊपर असर जो होता है ना वो डिप्रेशन की शक्ल में और एंग्जाइटी की शक्ल में और पसीनों की शक्ल में और यानी इस किस्म की जो है ना फिजिकल कैफियत उसके ऊपर तारी हो जानी शुरू होती हैं, ठीक है ना। ये 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 याद रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा आपके साथ, सही है। अच्छा, तो अब जो है ना वो अगली बात जो कि यहाँ पे हमने पढ़ी है ना कि अकलमंद पर लाजम है कि इस वक्त से पहले इस्लाह की फिक्र करे। इस्लाह की फिक्र क्या मतलब है इस जुमले का, ये क्यों मैं इसके ऊपर रुक गया हूँ उसके ऊपर, क्योंकि इस्लाह जो होती है ना ये फिक्र के बगैर नहीं होती, ठीक है। अगर आपके अंदर फिक्र नहीं है तो आपकी इस्लाह नहीं हो सकती। इसका एक मतलब और सुन लें, और इसका मतलब ये है कि अगर इस्लाह करते करते यानी आपको फिक्र हुई और आपने इस्लाह शुरू कर दी, लेकिन करते करते फिक्र बीच में से खत्म हो गई, फिक्र बीच में से खत्म हो गई, अब आपकी इस्लाह भी खत्म हो गई। ये नहीं है कि पहले फिक्र की वजह से इस्लाह को जो है ना आपने लॉन्च कर दिया, जैसे कि गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ना, तो गाड़ी एक दफा स्टार्ट हो गई ना तो अब उसके बाद बैटरी की जरूरत नहीं होती, चार्जर की जरूरत नहीं होती, है ना। अब बैटरी जो होती है वो, अब गाड़ी जो होती है ना वो बैटरी से नहीं चल रही होती, गाड़ी जो है वो डायनेमो से चल रही होती है, उसको डायनेमो कहते हैं उस चीज को, ठीक है ना। हमारी गाड़ी के साथ भी अभी पिछले दिनों ये सब कुछ हुआ, ठीक है। तो ऐसा मामला हमारी इस्लाह के साथ नहीं है। हमारी इस्लाह के लिए ये जो फिक्र है ना ये एक ऐसा करंट प्रोवाइड करती है जिस करंट की मुस्तकिल जरूरत रहती है, मुस्तकिल, राइट। अगर फिक्र खत्म हो गई तो इस्लाह भी खत्म हो जाएगी, इसी को कहते हैं इज़्तिराब, इसी फिक्र को ना इज़्तिराब भी कहते हैं, ठीक है। तो इज़्तिराब जो है ना वो लाजिमी चीज है एक मोमिन की जिंदगी में। अगर इज़्तिराब खत्म हो गया तो अब उसका मामला खत्म हो जाता है। तसव्वुफ चूंकि इस्लाह के निजाम को कहते हैं, इसी वजह से हमारे मशायख फरमाते हैं कि तसव्वुफ इज़्तिराब का दूसरा नाम है, ठीक है ना। तसव्वुफ इज जस्ट अनदर नेम ऑफ फिक्र, इज़्तिराब, ठीक है ना। अगर कोई शख्स तसव्वुफ के शेख से बैत तो हो गया लेकिन उसके अंदर इज़्तिराब है ही नहीं, या शुरू में था अब खत्म हो गया, तो इसका मतलब यह है कि अब शेख से बैत हो जाने से उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, उसकी इस्लाह जो होती है ना वो रुक चुकी है, ठीक है ना, अब वो आगे नहीं बढ़ रहा, सही है। तो ये फिक्र जो है ना ये मुस्तकिल की इंसान को रहनी चाहिए कि मैं अभी कहाँ खड़ा हूं। एक तो ये कि याद रहना चाहिए कि मैं पहले कहाँ खड़ा हुआ था, ठीक है। अब अगर मेरे अंदर कुछ तब्दीलियां आई हैं तो अब मैं कहाँ पहुंचा हूं, ये क्यों याद रहना चाहिए कि पहले किधर खड़ा था अब कहाँ खड़ा हूं, ये क्यों मालूम होना चाहिए। ये इसलिए मालूम होना चाहिए ताकि शुक्र का जज्बा पैदा हो, ठीक है ना, एहसान मंदी का जज्बा पैदा हो कि भाई मुझे जिन लोगों ने गाइड किया है, मुझे जिन लोगों ने मेरी गलतियों में मेरी इस्लाह करी है, ठीक है, मेरे शेख ने मुझे मेरी गलतियां बताई, मेरी वो गलतियां अब नहीं है, अब मैं वो वाली गलतियां नहीं कर रही, खवातीन से बात हो रही है ना, पहले करती थी। तो इस बात को याद रखना कि पहले मैं कैसी थी, अब मैं कैसी हो चुकी हूं, ये लाजमी है, ठीक है, ताकि शुक्रगुजारी और एहसान मंदी का जज्बा पैदा हो। अगर ये भी खत्म हो गया तो फिर भी आपका मामला खत्म, अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जब एहसान मंदी नहीं होगी ना तो फिर शैतान फौरन आ करके ना वो बदगुमानी पैदा करेगा, ठीक है ना, कि भाई मुझे क्या, मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है इनसे, मुझे तो यानी ऐसे ही है, बस बोलते रहते हैं और करना कराना कुछ नहीं है। तो शैतान इस तरह के जज्बात पैदा करेगा, और इस तरह के जज्बात अगर पैदा हो गए ना तो जितना आगे बढ़े थे तो बैक ट्रैक, फिर वही पीछे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो एहसान मंदी की वजह से पीछे का भी याद रखना है, जहां पर अभी मौजूद हैं यहां का भी याद रखना है कि मैं कहां हूं, राइट। इतना भी मालूम करते रहना चाहिए अपने मशायर से कि जी यानी आप बताएं कि जी मैं किस किस हालत में हूं और कहां पहुंचना है, मेरा गोल क्या है, राइट, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे अगला स्टेप। एक तो गोल होता है अल्टीमेट गोल, आखिरी गोल, आखिरी गोल तो जन्नत है, ठीक है ना, लेकिन एक होता है ना गोल की तरफ पहुंचने के लिए स्टेप्स भी तो होते हैं ना, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, अब मुझे व्हाट शुड आई बी वर्किंग फॉर, ठीक है ना, अब मुझे किसके लिए काम करना चाहिए। तो ये भी जो है ना वो मालूम करते रहना चाहिए ताकि आगे बढ़ने का शौक भी रहे, ठीक है ना, वापस पलटने का खौफ भी रहे, आगे बढ़ने का शौक भी रहे। ये सारी चीजें फिक्र के अंदर आती हैं, ठीक है, वापस पलटने का खौफ, आगे बढ़ने का शौक, ठीक है, ये देख लें, उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, सही है। तो ये इस्लाह जो है ना ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई किताब पढ़ लिया और इस्लाह हो गई, और या चंद बातें वजीफे पढ़ लिए या कुछ तहज्जुदें पढ़ ली, ये इस्लाह हो गई, नहीं, ऐसी ये नहीं है। ये इस्लाह जो है ना ये फिक्र के साथ होती है, और फिक्र में फिर ये सारी चीजें शामिल होती हैं। काफिरों वाली मौत की फिक्र हो तो कैसे ठीक करें, काफिरों वाली मौत की फिक्र हो तो कैसे ठीक करें। अब इसके ऊपर आसान सा जवाब तो ये था कि तौबा कर लें, क्योंकि कुफर के साथ मुशाबहत जो है ये तो गुनाह है ना, ठीक है, मन तशब्बहा बिकौमिन वोमिन हो, ठीक है ना, तो काफिरों के साथ आप मौत की फिक्र में भी तो मुशाबियत रख सकते हैं ना, तो ये कितना बड़ा गुनाह है, ठीक है ना, तो कहीं हमारा हशर भी उनके साथ ही ना हो जाए। तो इस वजह से फिर इस गुनाह से तौबा करनी होगी। अब इस गुनाह से तौबा करने का मतलब क्या है कि भाई एहसास होना कि ये गलत कर रही हूँ मैं, ठीक है ना, ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए, तो मैंने खामखा वेस्ट कर दिया अपना टाइम, ठीक है, तो इसको गलत समझना, फिर उसके बाद जो है वो इल्म हासिल करना कि जी फिर ईमान वालों की मौत की फिक्र का मतलब क्या होता है ना, ये इल्म हासिल करेंगे तो पता चलेगा ना। फिर उसके बाद जब ईमान वालों की मौत की फिक्र का तरीका पता लग गया तो अब जो है ना फिर उसको अपने अंदर पैदा करने की कोशिशों में लग जाना, ठीक है ना, और उसका एक बेहतरीन तरीका अल्लाह आपको जदाए खैर दे कि इन्होंने फरमाया ना हजरत जी की किताब है मौत की तैयारी, ठीक है ना, वो बेहतरीन एक रिसोर्स है सही मौत की फिक्र करने का तरीका सीखने के लिए, ठीक है, तो तौबा करना, फिर इल्म हासिल करना साथ साथ, और उसके ऊपर फिर अमल की कोशिशें शुरू कर देना, यही तरीका है काफिरों के तरीके। अल्लाह से उम्मीद रखना, हाँ बेशक अल्लाह से उम्मीद के बगैर तो आगे बढ़ने का शौक वैसे भी नहीं हो सकता। अगर ये खौफ रहे कि मैं पीछे तो नहीं चली गई पहले से, हाँ तो ये शेख फिर किस मर्ज की दवा होती है, शेख को बताना होता है ना ये सारी बातें, ठीक है ना, तो बता देते हैं नहीं नहीं आप पीछे नहीं गई हैं, फिक्र ना करें, आप बढ़ तो आगे ही रही हैं, लेकिन आपकी ये फिक्र जो है ना ये भी एक अच्छी बात है कि आपके अंदर ये फिक्र है कि मैं पीछे तो नहीं चली गई, ठीक है ना, तो ये सिर्फ फिक्र ही की हद तक है, विच इज गुड, आप एक्चुअली पीछे नहीं जा रही, आप एक्चुअली आगे जा रही हैं, तो ये तो काम शेख ने करने होते हैं ना, ठीक है, आप बताएंगे तो फिर उसके अंदर। अच्छा, तो इस्लाह की फिक्र, वल्तफत साप बिस्साक में लफ्ज सांप के मशहूर मानी पाओं की पिंडली के हैं, और पिंडली के एक दूसरे पर लिपटने का यह मफहूम भी हो सकता है कि इस वक्त इज़्तिराब और बेचैनी से एक पिंडली दूसरी पर मारता है, ठीक है, क्योंकि ये सकरातुल मौत का वक्त होता है, बेचैनी भी होती है, इसको पता लग रहा होता है कि बस यहाँ से मेरा चल चलाओ का वक्त आ गया है, ٹھیک ہے نا. اب وہ ساری چیزیں جن میں میں نے اپنی ساری کی ساری زندگی لگا دی تھی اور میں سمجھتا تھا کہ بس میں تو یہاں سے کبھی جان ہی نہیں والا ہوں نا, اب یہ میری غلط فہمی تھی اور اب حقیقت کھل رہی ہے میرے سامنے, تو وہ تو بہت ہی سخت قسم کا بے چینی کا وقت ہوتا ہے اس شخص کے لیے جس نے کہ اس سوچ میں اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے. یعنی مایوسی کی انتہا کا وقت ہوتا ہے اس دنیا کی زندگی اعتبار سے. ویسے تو مرنے کے بعد جو مایوسی ہوگی وہ تو اس کا تو کوئی ہم تصور ہی نہیں کر سکتے, لیکن زندگی کے اندر مایوسی کی جو پیک ہوتی ہے ایسے شخص کے لیے وہ یہ وقت ہوتا ہے جب اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بس دس از اٹ, دس از مائی اینڈ. پنڈلی کو انگریزی میں غالباً کیف کہتے ہیں نا, CAF, ٹھیک ہے. یعنی پاؤں اور گھٹنے کے درمیان والی جو جگہ ہوتی ہے نا شاید, تو یا اس سے جو نیچے والا پارٹ ہوتا ہے ذرا ساخ وہ کہتے ہیں. تو فرمایا کہ اس وقت اگر ایک پاؤں, اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اس وقت اگر ایک پاؤں دوسرے پر رکھا ہوا ہے اور اس کو حرکت دے کر ہٹانا چاہتا ہے تو وہ اس کی قدرت میں نہیں ہوتا, یعنی اتنا بھی اس کی قدرت سے ختم ہو جاتا ہے کہ اپنے پاؤں کو دوسرے پاؤں کے اوپر سے ہٹا بھی نہیں پاتا. تو یہ بھی اس آیت کا مطلب ہو سکتا ہے. کما قال الشعبی والحسن, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں دو ساقوں سے مراد دو عالم یعنی دنیا اور آخرت کے ہیں, ٹھیک ہے. اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن جمع ہوا. کیا عجیب وقت ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے, کہ اس عالم سے رخصت ہو رہا ہے اور اگلا عالم سامنے کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت پردے ہٹا دیے جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے. فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے اور فرشتوں کے پیچھے جو عالم برزخ کا سارا معاملہ ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. تو یعنی مرج البحرین یلتقیان, جیسے دو سمندر ملتے ہیں اسی طریقے سے یہ تو دو عالموں کے ملنے کا وقت یعنی موقع ہوتا ہے. اس لیے دوہری مصیبت میں گرفتار ہے, دنیا سے جدائی کا غم اور آخرت کے معاملے کی فکر, ٹھیک ہے. دنیا سے جدائی کا غم, کتنے خوش نصیب ہوتے ہوں گے وہ بندے کہ جن کو دنیا سے جدائی کا غم نہیں ہوتا ہو. کیا عجیب بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, کیا عباد الرحمان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بھائی اس کے لیے بس زندگی کو کی تھوڑی ترتیب بدلنی پڑتی ہے, اپنی سوچوں کو بس بدلنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. سوچوں کو بدل لینا بس پھر آگے کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. لیکن ہم بس ترتیب تو پھر بھی شاید کچھ بدل بھی لیتے ہیں, جیسے دیندار لوگ ہوتے ہیں تو ہم نے بہت ساری اپنی ترتیبیں جو ہے نا وہ بدلی بھی ہوتی ہیں, لیکن سوچوں کو بدلنے کے معاملے میں دیندار بھی جو ہے نا وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اکثر, ٹھیک ہے نا. ایکسیپشن تو ہر جگہ ہوتی ہیں, لیکن یعنی کچھ لوگ تو سوچوں کو بدل لیتے ہیں لیکن اکثر لوگ جو ہے نا وہ سوچوں کو نہیں بدل پاتے. آپ میں سے نہ جانے کس نے کل مراقبے والا بیان سنا ہوگا, لیکن اس میں یہ بات یہی ہو رہی تھی کہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک دنیا کی اہمیت پہلی ہوتی ہے اور دین کی اہمیت اندازن کتنی ہوتی ہے. سنا تھا کسی نے کیا کہا تھا کل, جو دنیا دار ہوتا ہے اس کے نزدیک دین کی اہمیت دسویں درجے پر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ دسویں درجے پر. اور یہ آپ ہی میں سے کسی ایک ہسبینڈ صاحب نے ساتھ اس کو بتایا تھا کہ ان کے علاقے کے بزرگ نے یہ بات لوگوں سے کہی تھی کہ لوگوں اگر تمہارے نزدیک دنیا کی دین کی اہمیت اگر دوسرے درجے پر بھی ہوتی ہے نا, تیسرے درجے پر بھی ہوتی ہے نا, تو تمہاری حالت بہت بہتر ہوتی, لیکن تمہارے نزدیک تو دین کی اہمیت دسویں درجے پر ہے, ٹھیک ہے. تو بہت بہتر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بس کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ دین کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہوا ہوتا ہے, نہیں. دوسرے نمبر پہ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں دینداری آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. بڑے بڑے گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں, موسیقی زندگی سے نکل جاتی ہے اور نمازیں شروع ہو جاتی ہیں اور کچھ حد تک پردہ آ جاتا ہے, صحیح ہے. تو یہ تو دوسرے تیسرے درجے پہ جو لوگ دین کو رکھتے ہیں نا ان کی زندگیوں میں یہ ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں, جیسے کہ ہم سب کا تقریباً یہی حال ہے, ٹھیک ہے. لیکن دین کی کا جو تقاضا ہے بلکہ حقیقت میں اللہ رب العزت کا جو تقاضا ہے نا انسان سے وہ یہ نہیں ہے کہ تم میرے دین کو دوسرے درجے پر رکھو تیسرے درجے پر رکھو، اللہ کا تقاضا تو ہے کہ پہلے درجے پر رکھو، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی وجہ سے جو بھی پہلے درجے پر رکھتا ہے نا دین کو، پھر وہی کامیاب ہوتا ہے، اسی کو جو ہے نا پھر تصوف کی زبان میں نسبت اصلاحی ملتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اصلاحی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک دین کو پہلے نمبر پہ نہ لے کر کے آئے، ٹھیک ہے؟ دوسرے تیسرے نمبر والوں کو نسبت اصلاحی نہیں مل سکتی، ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ نسبت القائی مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کی زندگی کی ترتیب تبدیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ترتیب کا تبدیل ہو جانا نا، اس کے اوپر فریفتہ نہیں ہو سکتے ہم، اس کے اوپر ہم مطمئن نہیں ہو سکتے کہ جی میری زندگی کی ترتیب پہلے تو ایسی تھی اور اب تو اتنی زبردست ہو گئی ہے، بس اطمینان سے بیٹھو یہی کرتے رہو بس، نہیں یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے رب کی ڈیمانڈ ہم سے یہ نہیں ہے کہ تم صرف ترتیب تبدیل کر لو، بلکہ سوچ کو تبدیل کرو گے تب جو ہے نا پھر تم حفاظت میں آؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ پھر تمہیں نسبت اصلاحی ملے گی۔ تو بہرحال اس کی فکر جو ہے وہ ہمیں شدید درجے کی ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہم نہیں کر پا رہے۔ اب یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم اٹک جاتے ہیں نا آ کر کے، ہم نسبت القائی پہ آ کے اٹک جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا یہ کہ اگر عام زبان میں بات کی جائے تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ترتیب تبدیل کر لینے کے بعد ہم اٹک جاتے ہیں، ہم اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی بہت اچھا ہو گیا ہے سب کچھ، ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، مسجد بھی جا رہے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور ٹھیک ہے نا، وہ سارے گناہ کبیرہ جو ہم پہلے کر رہے ہوتے تھے وہ سب نہیں کر رہے ہیں، تو بہت سب ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کے تقاضے کو آپ میٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح کا یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں نا کہ آپ نمبر ون، آپ ہیں تو نمبر ون لیکن ہم نے آپ کو نمبر ون پوزیشن نہیں دینی اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اللہ تعالیٰ کو جیسے کہ صاحب نے ایک میسج میں لکھا تھا، سب کو تو نہیں بھیجا تھا لیکن دین اسینشلز کے اوپر بھیجا تھا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنا ہے نا کہ اللہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ آپ نمبر ون ہیں لیکن ہم اپنی زندگی کی ترتیب میں نا آپ کو نمبر ون نہیں دے سکتے، بس ٹھیک ہے نا، بس ٹھیک ہے آپ راضی ہو جائیں ہم سے اس کے اوپر، بھائی یہ تو مذاق کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو پھر اب اللہ تعالیٰ کا قہر آتا ہے ہمارے اوپر، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکار رہے ہوتے ہیں نا، تو اب اللہ تعالیٰ کی سزا تو آنی ہے، کسی نہ کسی شکل میں آنی ہے۔ شکلیں تو بڑی ایک سے ایک، ہم کلاسز کے اندر بھی ان کے اوپر بات کر چکے ہیں، لیکن ایک عام شکل، ایک عمومی نوعیت کی کیا ہوتی ہے کہ چونکہ نسبت القائی کے اوپر نا آپ کو پھر استقامت نصیب نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے اندر وہ اسٹرینتھ نہیں آ سکتی آپ کے دین کے اندر، نسبت القائی کے لیول کے اوپر، ترتیب بدلنے والے لیول کے اوپر آپ کے اندر وہ مضبوطی نہیں آ سکتی۔ تو اس وجہ سے جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے مثال کے طور پر، تو پھر جو ہے نا وہ آپ کے دین کی جو عمارت تھی نا وہ پھر زمین بوس ہو جاتی ہے، یہ ایک مثال ہے خالی، صحیح ہے؟ وہ دین کی عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے، پھر جو ہے نا وہ جو دنیا والے ہوتے ہیں نا، دنیا دار، جن کی زندگی میں دین جو ہے وہ نویں دسویں مقام پر تھا، اب وہ دنیا دار جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ پھر آپ کے دین کو جو ہے نا کہتے ہیں یار اتنا بھی نہیں ہوتا، ایسا بھی نہیں ہوتا دین میں، رکھو اپنے دین کو اپنے پاس، ابھی تو موقع ہے ذرا مزے کرنے کا، ہر وقت تو تھوڑی آتا ہے، کبھی کبھار ہی ہوتا ہے ایسا، تو چلو بس آج کر لیتے ہیں سارا کچھ۔ اب وہ جو دیندار لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہے نا، وہ پھر ان کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہوتی، استقامت ہی نہیں ہوتی، ویسے بھی اندر کا دل جو ہوتا ہے وہ چوری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس کی وجہ سے ان کے وہ جو ایک ترتیب بدلی ہوئی تھی نا پہلے سے، ٹھیک ہے نا، وہ بدلی ہوئی ترتیب بھی جو ہوتی ہے نا پھر بیک ٹو اسکوئر ون پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے نا اس لیول کے اوپر ہم مطمئن ہو کر کے ہرگز نہیں بیٹھ سکتے۔ تو دنیا سے جدائی کا غم ایسے شخص کو جو کہ دنیا کے اوپر سے اپنی گرفت کو ڈھیلا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، تو اس کو تو غم ہوگا نا، جب کھینچ کر کے اس کی گرفت کو چھڑوایا جا رہا ہوگا, فرشتے آ کر کے رائٹ اس کی گرفت کو چھڑوا رہے ہوں گے, تو اس کو غم بھی ہوگا اور شدید تکلیف بھی ہوگی. جبکہ ایمان والے کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے, اس کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے جانے کی, لیکن اس کو فکر کس کس بات کی ہوتی ہے, اپنے اولاد کی ایمان کی فکر ہوتی ہے, یہ فکر اس کو ہوتی ہے اس وقت بھی. تو اس کا کیا حال ہے, پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ, ذرا کسی کو اگر پتا ہے تو وہ بتائے. اس کو اپنے اولاد کی ایمان کی فکر ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا کیا انتظام کرتے ہیں پھر, کیونکہ اس کو ساری زندگی اولاد کی ایمان, جس دیکھیں ساری زندگی جو چیز آپ پہ لگی ہوگی نا, جو فکر لگی ہوگی نا, وہ فکر اس وقت بھی ہوگی. اگر دنیا کو ٹھیک کرنے کی فکر لگی ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, دنیا میں یہ کرنا ہے وہ کرنا, تو وہ فکر اس وقت بھی ہوگی. اسی طرح اولاد کی ایمان کی فکر آپ کو اگر زندگی میں لگی ہوئی تھی, تو موت کے وقت جو ہے وہ اولاد کی ایمان کی بھی فکر ہوگی. تو کیا اس کا انتظام کیا ہمارے پروردگار نے اپنے نیک بندوں کے لیے, تو اللہ نے انتظامات کیے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے. اللہ اللہ وارث نہیں چھوڑ رہے ہیں, آپ بتائیں گے جا کر کے ان کو, یہ تو آپ سے پوچھنا ہے کہ بھائی کیا ہوتا ہے پھر اس وقت, ٹھیک ہے. ظاہر ہے پھر آپ نے سے کسی نے وہ والی حدیث نہیں پڑھی ہے, تو بلکہ ہم نے بیانات میں تو خیر بتائی بھی ہے وہ حدیث. بھائی فرشتے آ کر کے نا, فرشتہ موت کا فرشتہ ہوتا ہے یا کوئی ان کی ٹیم کا کوئی اور فرشتہ, وہ آ کر کے اس ایمان والے کو کہتا ہے کہ اپنے اولاد کی فکر نہ کرو, اللہ تعالی اس کا خیال رکھیں گے. باقاعدہ بلوایا جاتا ہے فرشتے کے ذریعے سے, رائٹ, اطمینان دلوایا جاتا ہے. اور جب یہ اطمینان اس کو دلوا دیا جاتا ہے, یہ تو ماننے والا تھا, پہلے ہی مانتا تھا, ایمان لیتا ہے اس بات کو, اب وہ فکر بھی اس کے پاس سے ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کی کامل توجہ جو ہے وہ اپنے رب کے پاس پیش ہونے کی طرف پلٹ جاتی ہے, رائٹ. وہ جو ایک فکر تھی نا, جینوئن فکر, رائٹ, اچھی فکر, وہ اچھی فکر بھی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی ایسا کریم پروردگار ہے, ایسا رحیم پروردگار ہے, تو کیوں نہ ہم ابھی جب ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں, سارے وسائل موجود ہیں, بتانے والے بھی موجود ہیں, سکھانے والے بھی موجود ہیں, توبہ کے لیے بھی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, سوچ کی تبدیلی کا بھی ہمارے پاس موقع ہے, رائٹ, تو کیوں نہ اس موقع کو ہم استعمال کر لیں. تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم آپ سے مزید لے کر کے نا اس کو ختم کر لیتے ہیں بس. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا, لفظ اولا ویل کا مقلوب ہے. مقلوب کا مطلب کیا ہوتا ہے, قلب سے نکلا. قلب کا مطلب ہوتا ہے پلٹ, الٹنا پلٹنا, جو کہ ہمارے قلب کا کام ہوتا ہے. تو مقلوب کا مطلب کہ ویلون کے لفظ کو جو ہے نا وہ پلٹ کر کے اولا بنایا گیا ہے, ٹھیک ہے. یہ یعنی مقلوب سے مراد بس یہاں پہ اتنی ہی ہوگی. ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں. یہاں اس شخص کے لیے جس نے کفر و تکذیب ہی کو اپنا شعار بنائے رکھا اور دنیا کے مال و دولت میں مست رہا, پھر اسی حال پر مر گیا, اس کے لیے چار مرتبہ لفظ ہلاکت و بربادی استعمال کیا گیا, کہ مرنے کے وقت, پھر مرنے کے بعد, قبر میں, پھر حشر و نشر کے وقت, پھر جہنم میں داخلے کے وقت, یہ مصیبت و بربادی تیرا حصہ ہے. علیس ذلک بقادر علی ان یحجج الموتى, یعنی کیا وہ ذات حق جس کے قبضہ قدرت میں موت و حیات اور سارا جہان ہے, کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ قیامہ کی اس آیت کی تلاوت کرے تو اس کو یہ کلمات کہنا چاہیے, بلا وانا علی ذلک من الشاہرین, یعنی بلا شبہ وہ اس پر قادر ہے اور میں بھی ان لوگوں میں داخل ہوں جو اس کی گواہی دیتے ہیں. یہ اس کا ترجمہ ہو گیا اس عبارت کا. اس حدیث میں یہی الفاظ سورہ والتین کی آخری آیت علیس اللہ بحکم الحاکمین پڑھنے کے وقت بھی کہنے کی تعلیم دی گئی ہے. اور اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو شخص سورہ مرسلات کی اس آیت پر پہنچے تو بِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, تو اس کو آمنا باللہ کہنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اب ان کلمات کو اگر یاد کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ یاد دلا بھی دیں کہ جب آپ کبھی اس صورت ان صورتوں کی تلاوت مکمل کر رہے ہوں تو یہ حدیث میں بتائے ہوئے الفاظ کو پڑھ بھی لیں, تو یہ پھر مستحب عمل ہے. کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ جب اس صورت پڑھیں گے تو پھر اب فرض ہے کہ یہ پڑھیں یا واجب ہے یہ پڑھیں, بلکہ مستحب ہے. پڑھیں گے تو ثواب ملے گا, اور اگر بھول گئے نہیں پڑھا تو ثواب سے بس محروم ہو جائیں گے اور عذاب یا گناہ نہیں ہوگا.
ठीक है, किसी को कोई सवाल है या कोई कमेंट है तो भी पूछ लें। जब तक अगर कोई कमेंट है आप लिखें या सवाल है। जब तक ये बताना था आपको कि सूरह कयामत के साथ जो है ना, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पारा है हमारा वो इस तफसीर क्लास के अंदर मुकम्मल हो गया मेरे ख्याल में। अगर आपको तो असल में इतना वक्त नहीं मिला कि पूरा मैं पीछे पीछे जाके हिस्ट्री देख सकूं कि आपकी क्लास के अंदर कौन कौन सी सूरतें हो चुकी हैं। मेरे ख्याल में हमने आपकी क्लास में सूरह मुजम्मिल से शुरू किया था, बल्कि इस पारे को हमने सूरह तो दहर से शुरू किया था, फिर सूरह मुसरात पढ़ी थी, तो ये दो सूरतें आखिरी वाली मुकम्मल हो गई थी, फिर सूरह मुजम्मिल से शुरू किया था और सूरह कयामत तक आज इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। तो इस पारे को अब यानी छोड़ करके ना, फिर वो इरादा ये हो रहा था कि सूरह काफ से शुरू किया जाए आप लोगों को, ठीक है। उसकी वजह यह है कि इस पारे को मुकम्मल मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कुछ सूरतें हैं जो कि हमने पढ़ी ही नहीं है, तो वो पढ़ ली जाए। ये सूरतें जो है वो हमारी दीन एसेंशियल्स की क्लास के अंदर ऑलरेडी हो रही हैं, बल्कि हो चुकी हैं, ठीक है। तो अगर किसी को सुनना हो तो उनकी रिकॉर्डिंग अलहमदिल्ला सारी मौजूद है। तो इस वजह से हम जो सूरतें अब तक कवर बिल्कुल भी नहीं हुई हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो इस नीयत के साथ हम सूरह काफ से पढ़ना शुरू करेंगे। अगरचे कि एक क्लास में जिसमें आप में से चार पांच तालिबात थी उसमें हम सूरह काफ की तफसीर पढ़ चुके हैं एक दफ़ा, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ चार लोगों ने पढ़ा था और काफ़ी अर्सा हो गया उसको पढ़े हुए, तो इस वजह से सूरह काफ की अहमियत के पेश नज़र उसको हम दोबारा से पढ़ लेते हैं, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज में अक्सर औकात जो है सूरह काफ की तिलावत किया करते थे, गोया के सहाबा कराम का जो दिन शुरू होता था ना वो सूरह काफ को सुन करके शुरू होता था, और तुम लोगों का दिन कैसा गुजरता था, अल्लाह की रजा वाला दिन, तो सूरह काफ की एक बड़ी अहमियत है इस एतबार से, ठीक है। हाँ, तो आपकी क्लास में ये चीज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन आपकी क्लास में ज्यादा से ज्यादा चार या पांच लोग थे ना, और सूरह काफ की अहमियत तो इस वजह से बहुत है। तो इस वजह से सूरह काफ से शुरू करते हैं और फिर उसके आगे की जो चंद सूरतें कवर नहीं हुई हैं तो वो फिर हम पढ़ लेंगे अगली क्लास में, फिर सूरह काफ अगर आप मुताला करके आना चाहें कर लीजिएगा। अल्लाह ताला को पहले नंबर पे कैसे रखते हैं? आपके सवाल वैसे बड़े मजे के होते हैं, अच्छा कि आपने प्राइवेटली पूछा है, यानी ऐसा सवाल करो कि उसके ऊपर फिर आपको किंडरगार्टन से पढ़ाना शुरू करें। तो यानी बहुत ही बुनियादी किस्म का सवाल है ना, आप हर बात हमेशा बुनियाद से शुरू नहीं कर सकते ना, अल्लाह ताला को पहले नंबर पे कैसे रखते हैं? अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था ना वही इसका जवाब दिया कि तौबा कर लेते हैं दूसरे नंबर पे रखने से, ठीक है ना, और फिर पहले नंबर पे रखना शुरू कर देते हैं। देखिए इसके जवाब को समझने के लिए ना हमें चाहिए कि हम अपने अहवाल पे नजर करें, ठीक है। चले, सवाल चूंकि आपने किया है तो आपके सवाल की बरकत से इसका एक एक, एक जवाब भी आ गया, ठीक है ना। ये जवाब जरा मुश्किल है, बल्कि बहुत मुश्किल है, बल्कि सबसे मुश्किल है, ठीक है ना, यानी इस जवाब पे अमल करना। लेकिन मुश्किल होने के बावजूद जो है ना वो नामुमकिन नहीं है, और दूसरी बात ये कि यही है इसका जवाब, ठीक है। तो क्या है भाई इसका जवाब, तो आपसे पूछ रहे, माशाल्लाह आप में से बहुत सीनियर सालिकात भी तो है ना मौजूद, तो अगर आप में से कोई इसका जवाब अटेम्प्ट करे, सवाल इनका ये है कि अल्लाह ताला को पहले नंबर पे कैसे रखते हैं? जवाब पे अमल करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन जवाब सबसे आसान है एक्चुअली इसका, ठीक है ना। तरजीहात पर गौर व फिक्र करें। अच्छा ठीक है, शेख को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखकर, इतना मुश्किल जवाब ना दें कि बाकी लोगों को हजम ही ना हो, आसान सा जवाब दे देना जो कि है बहुत ही आसान जवाब। पहला कदम नफ्स पर रखें, इतना आसान काम है पहला कदम नफ्स पर रखना, सुन्नत पर अमल करें। ये तो आपने आलिमा वाला जवाब दे दिया ना, किताबी जवाब, चले सुन्नत पर अमल करें, वैसे जवाब तो ठीक है,
سنت پر عمل کریں, لیکن سنت کیا کیا ہوتی ہے سنت؟ سیدھا پیر اندر رکھیں مسجد کے, الٹا پیر باہر نکالیں, داڑھی رکھنے, کیا مطلب سنت پر عمل کریں؟ اچھا جی چلیں, آپ کے سوال, آپ کے جواب کے اوپر ایک اور سوال کرتے ہیں, کس کی سنت پہ عمل کریں اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں, بار بار پروبر کریں کہ اپنے جیسے کے سامنے خود کو مٹانے سے, اپنے جیسے کے سامنے, اپنے جیسے کے سامنے نہیں مٹائیے گا, الٹا ہی ہو جائے گا کچھ. صحابہ کی سنت پر, ہاں سنت تو صحابہ کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو صحابہ کی سنت. خیر چلیں, اس کا آسان جواب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں نمبر ون پر کیسے رکھیں. اس کا جواب بہت آسان سا ہے, اللہ والوں کو اپنی زندگی میں نمبر ون رکھیں. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر انفرادی لیول پر اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جس کو آپ نے شیخ بنایا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہی اللہ والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اجتماعی لیول پہ اگر دیکھا جائے تو اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ علماء اور مشائخ, ان کو نمبر ون رکھنا, ٹھیک ہے نا, یعنی ان کی بات کو نمبر ون رکھنا, ان کے مشورے کو نمبر ون رکھنا, ان کی دی ہوئی جو معمولات ہیں ان کو نمبر ون رکھنا, ان کی دی ہوئی گائیڈنسز کو ان کو نمبر ون رکھنا. یہ جب ہم کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں نمبر ون ہو جاتا ہے, آسان سی بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ اس پہ عمل سب سے مشکل کام کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو سب سے یعنی جو دشمن ہے, جو ان جو جس کے لیے یہ اللہ والے اوپن تھریٹ ہیں, وہ کون ہے؟ شیطان. ٹھیک ہے نا, تو اب شیطان جو ہے نا وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے, بلکہ کتابیں بھی لا کر کے سامنے رکھ دیتا ہے, دیکھو یہ اللہ والے غلط بتا رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا, جن کو ہم اللہ والے کہہ رہے ہو نا یہ نہیں اللہ والے, دیکھو کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. تو شیطان نا اس وقت وہ کتابیں پڑھنے کی بھی توفیق یعنی توفیق تو شیطان کیا دے گا, توفیق تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن شیطان پھر وہ کتابیں بھی پڑھواتا ہے کہ جن کو پڑھنے کی آج تک ہمیں توفیق نہیں ہوئی تھی, کیونکہ اس نے اللہ والوں کا راستہ کاٹنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب وہ آپ کو تفسیر بھی لا کر کے پڑھائے گا, دیکھو یہ غلط کہہ رہے ہیں, دیکھو تفسیر میں تو یہ لکھا ہوا تھا, غلط کہہ رہے ہیں یہ, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اس وجہ سے نا جواب تو سب سے آسان ہے, لیکن جواب پر عمل کرنا سب سے مشکل ہو جاتا ہے, اس لیے کہ شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے, بلکہ تفسیر تک پڑھانا شروع کر دیتا ہے, جس کو آج تک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی وہ بھی پڑھ کے جاؤ, جا کر کے تفسیر پڑھو, اس میں دیکھو یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہوتا ہے بھائی, جب ہی تو مشکل ہو جاتی ہے اپنے جیسوں سے کہنے سے. ہاں میں آپ کی بات سمجھ گیا تھا وہ ذرا, کیونکہ جواب یہ نہیں مطلوب تھا اس طرح سے آپ کے کہنے کے اوپر, ذرا سے بس. ہاں بالکل صحیح, آپ بالکل صحیح فرما دیں گے. ٹھیک ہے چلیں, بہت ایکسٹرا ٹائم لے لیا آپ لوگوں کا, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.